2006
अर्पित करबे कारण बहु बस्ता सर्वप्रथमे श्री रसानंद ब्रह्मचारी तहां गुणानुवाद करबे ज्ञानांजन सलगिला चक्षुर्मिलिता मुझेना तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदलय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्ते विप्रलम्भ रसाम्बधे पादाम्बुजाय ते नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म निखिला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सप्तश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पैपराज का आचार्य त्रिदेव स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता उपस्थित त्रिदेवीपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज हमारे भरात्मय गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य
किसकी गिर गई है
गौर किशोर दास गोस्वामी बाबा जी महाराज का महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखी पुष्पाहार गौर भगवान यदि महाप्रभु का जितने भक्त है यदि महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान यदि उनके अंदर भी वैराग्य ही मूल है इसलिए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भी महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेकम पुरुष पुराण वे भी महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग वो भी कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग को जो शिक्षा देने के लिए वो पुराण पुरुष जो महाप्रभु जगत में आए आज महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान इसलिए इनका स्तुति में इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नम गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति कहते इनका मूर्ति क्या था कहते साक्षात वैराग्य का मूर्ति है इसलिए वैराग्य का दो अर्थ होता है एक अर्थ होता है साधारण रूप में विषय में वैराग्य है इसलिए इनका भी कहते हैं रघुनाथ वैराग्य जेना पाषाण रेखा उसी तरह इनका अंदर में भी रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे इनके अंदर में साधारण रूप में बड़े वैराग्य जीवन देखने को मिलता है ऊपर का जो उनका बेस है और दूसरे वैराग्य का तात्पर्य जो होता है विशेष पूर्वक भगवान का चरण में अनुराग है इसलिए साक्षात वैराग्य मूर्ति कद विप्रलम्भ रसाम्बधे कद वैराग्य विशेष अनुराग कैसे था कद विप्रलम्भ रस का ये साक्षात मूर्तिमान थे इसलिए सबरे हम श्रवण कर रहे थे कैसे हर समय कोथाए को प्रेममयी राधे राधे यह कीर्तन उनको बहुत ही प्यारा था सब समय कोथाए को प्रेममयी राधे राधे बोल करके कीर्तन करते थे। और कभी कभी वे दरवाजा बंद करके बड़े जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को इतने जोर जोर से उच्चारण करते थे, ऐसे लगता था मानो गला फट करके खून बहने लगेगा, इतने जोर जोर से हरिनाम करते थे। इसलिए इनका शिक्षा है, उच्च स्वर कर हरि नाम राव, नामेरे प्रभाव स्मरण हरिवे सकाले भजन निर्जन संभव। इसलिए उच्च स्वर में हरिनाम करने के लिए उन्होंने विशेष पूर्वक शिक्षा दिया है। इसलिए कभी कभी इनके पास में कोई कोई व्यक्ति आते थे, कहते बाबा जी महाराज हमको सिद्ध प्रणाली की शिक्षा दो, अष्टतालीय लीला की हमें शिक्षा दो। लेकिन बाबा जी महाराज को साक्षात सिद्ध पुरुष है, उनको पता है ये अनधिकारी व्यक्ति ये सिद्ध स्वरूप की चिंता नहीं कर सकते, ये अष्टकालीय लीला स्मरण करने का अयोग्य रहे। इसलिए वे अनधिकारी व्यक्तियों को यह चीज नहीं दिया करते थे, शिक्षा नहीं देते थे। इसलिए इनका जो जीवन है साक्षात वैराग्य मूर्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत में महा वैरागी हैरा करे परापेक्षा अतएव कृष्ण कार्य करे उपेक्षा, कभी जो वैरागी है उनको विशेष करके लक्षण है रक्षी सती विश्वास गुप्तृप्ते वर्णन तथा, कहते उनको भगवान के ऊपर में यह विश्वास होनी चाहिए भगवान अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान संपूर्ण रूप में हमें रक्षा करेंगे और भरण पोषण करेंगे। कभी यह चीज वो कौन विश्वास कर सकते हैं, कभी वही कर सकते हैं जो संपूर्ण भगवत चरण शरणापन्न। इसलिए भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी एक शुद्ध वैराग्य के लिए जो लक्षण उन्होंने बताया, कोई बोलेगा भैया अगर सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने के लिए आएंगे फिर हम खाएंगे क्या, तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान इतना बड़ा पृथ्वी बना दिया, इतने पेड़ पौधा फल मूल लगा दिया, फिर तुम खाने के लिए क्यों चिंता करते हो। कहते भैया कम से कम सोने के लिए तो कहीं स्थान होनी चाहिए। कहते क्यों, भगवान सुंदर सुंदर गुफा बनाए और इतना बड़ा पृथ्वी क्यों बनाया उन्होंने, इतने बड़े पृथ्वी बना दिया सोने के लिए कहीं कमी है। किसने कहा भैया फिर पीने के लिए तो पानी चाहिए, कल इतने भगवान इतने जो गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा इतना नदी जो बनाया तो भगवान क्यों इतना नदी क्यों बनाया। कहते ठीक है लेकिन कम से कम पानी पीने के लिए कोई पात्र तो चाहिए। कहते क्यों, भगवान अंजलि नहीं दिया, ये अंजलि दे दिया इसमें पानी भर भर कर पी लो। कहते भैया सोने के लिए तो कहीं बिस्तरा चाहिए, हाँ बिस्तरा चाहिए और सोने के लिए बगैर तकिया के थोड़ी नींद आएगी। कहते क्यों, भगवान ये हाथ नहीं दिया, ये हाथ के सहारा से सो जाओ। कहते अगर जंगल में आप बोलते हो जंगल में रहकर भजन करेंगे, अगर शेर आकर खा गया तो। कहते क्यों, भगवान क्या अपना भक्त वत्सलता प्रभु ने क्या छोड़ दिया है, भगवान को कभी कोई विश्वास नहीं है। कहते यह जो सुखदेव गोस्वामी एक निरपेक्ष वैराग्य के लिए जो बताए, कभी धन दुर्बल दुर्मंधा था, जो धन जो मतवाला है उनको पास में गिड़गिड़ाने का, उनको पास में हाथ भरने का कोई जरूरत नहीं है, भगवान के ऊपर में निर्भर करके भगवान भजन करो, भगवान संपूर्ण तुमको रक्षा करेंगे। कहते यह जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताए, ये एक एक वस्तु ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जीवन में ये देखने को मिला। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो रहते थे कहाँ पर, कोई अच्छे जगह में नहीं, वो साधारण पैखाने में रहते थे। कहते क्यों, कहते ये इसका बदबू सही है हाँ, लेकिन बाहर रहेंगे विषयी लोग इनको आकर तंग करते थे, जानते थे सिद्ध महात्मा, इसलिए कभी कभी चारों तरफ में कांटा बिछवा मछली का कांटा चारों तरफ में बिछा देते थे। कहते साधारण लोगों को यह विश्वास हो कि बाबा मछली खाने वाला बाबा है, नहीं तो ये मछली का कांटा क्यों मारेगा, कम से कम मेरे को तंग नहीं करेंगे, विषय का जो गंध है कम से कम मेरे कान में नहीं आएगा। इसलिए उन्हें उससे डर से वो पैखाना का अंदर रहकर के जोर जोर से हरिनाम करते थे। जिस समय हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आकर के जिस समय उनको कृपा प्रार्थना और उनको कृपा प्राप्त किया और उनको कृपा प्राप्त करके निर्भय होकर के सारा जीवन में जैसे उन्होंने निर्डर होकर के सिंह रूप में सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ये महापुरुषों का आशीर्वाद है। और उनको सिंह का बच्चा भी सिंह होता है, इसलिए हमारे महाराज जी को भी देखो, अभी एक शहर है हमने बहुत सारी जगह में गए महाराज को देखा बड़े से बड़े व्यक्ति, बड़े से बड़े व्यक्ति का वृंदावन दो तीन जगह में देखा, कहीं भक्ति का विरोध, कहीं मायावती को बाहर में किसी ने बोल दिया तो महाराज भी शेर जैसे एकदम उसको चपट पड़े। मैं तो इतना डर रहा था, महाराज इतने बड़े आदमी इसको ऐसे ऐसे उसको एकदम उसका जो सिद्धांत को ऐसे चकनाचूर कर रहे थे, मैं तो डर रहा था। महाराज कोई डर भय है नहीं, इसलिए ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज परंपरा में समझो कि महाराज भी एक शेर का बच्चा शेर जैसे है, क्योंकि इनका जो क्रिया है कभी कभी प्रभुपाद से कुछ अलग दिखती है। जैसे प्रभुपाद ने कहा, देखो ये कलकत्ता जो है ये कली का स्थान है, खबरदार वहां जाना नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, सर्वप्रथम हुए श्री बागवाचार्य गौड़ीय मठ को सर्वप्रथम उन्होंने स्थापन किया है। और प्रभुपाद ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जैसे बेस है, कौन सा बेस है, कहते बाबा जी बेस है। लेकिन प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है, प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है संन्यास बेस किया और संन्यास बेस लेकर प्रचार किया। और हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा था, जब मैं अप्रकट शरीर छोड़ूंगा मेरे चरण में रस्सी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में मेरे कलेवर को पूर्ण घिसाते हुए मेरे को गंगा में फेंक देना, कम से कम नवद्वीप का रजत मुझे प्राप्ति होगी। लेकिन प्रभुपाद ने वो काम नहीं किया, इसलिए जिस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अप्रकट होते हैं उसी समय खबर पाते ही प्रभुपाद वहां पर आए। और कुछ बाबा जी लोग जानते हैं सिद्ध महात्मा, अगर इसको समाज देंगे कम से कम लोग प्रणाम देंगे, कम से कम अपने बिजनेस में चल जाएगा। इसलिए कुछ लोग वहां पर बाबा जी लोग इकट्ठे हो गए, प्रभुपाद सुनते ही वहां पर अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर वहां उपस्थित होते हैं। उपस्थित होकर के दावी करते हैं ये वैराग्य महापुरुष है, इनका अगर कोई शिष्य है केवल मैं ही अकेला शिष्य हूँ, यहाँ पर कोई शिष्य नहीं। लेकिन वहां पर सारे बाबा जी बोल रहे हम ही शिष्य है। उस समय बड़े झगड़ा हुआ, वहां पर पुलिस अफिसर लोग सब आ गए। जब पुलिस अफिसर आए वहां प्रभुपाद वहां पर दावी किया इनका शिष्य कोई नहीं, तो उन्होंने कहा आपको क्या प्रमाण है, कहते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये साक्षात महापुरुष है, महाभागवत अपराजित कलेवर, अगर इनको शरीर को कोई अगर स्पर्श करेगा तो वो ध्वंस हो जाएगा। इसलिए अगर कोई इनका शिष्य ये त्यागी है और मैं भी उनका एक त्यागी शिष्य हूँ, इनको कोई त्यागी महापुरुष ही समाधि दे सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। कहते इनको बाबा जी वैसे है, कहते ऊपर से केवल बाबा जी वैसे लिया है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बाबा जी में है एक साल के अंदर में अगर किसने मन में भी कोई व्यक्ति अगर स्त्री संग नहीं किया वो आ करके इनको समाधि दे, नहीं तो इनको शरीर को स्पर्श करेगा तो जल करके राख बन जाएगा। उनको सुनते ही बाबा जी लोग कांप गए, और जो लोग बाबा जी भ्रष्टाचार थे वो तो पीछे पीछे सरकने लगे। कहते अगर एक साल में नहीं हो, छह महीना के अंदर में अगर किसी ने स्त्री संग नहीं किया है, अगर वे आकर के उनके शरीर को समाधि दे, इसको सुनते और कुछ बाबा किसा गए। अगर कहते अगर छह महीना के अंदर में नहीं, अगर एक महीना के अंदर में अगर किसी ने नहीं किया आए और कुछ खिसक गए, ऐसे कोई फेर नहीं। कहते 15 दिन एक सप्ताह लास्ट प्रभुपाद किसी ने ये बताए, एक दिन पहले तक एक रात्रि पहले तक मन में अगर किसने स्त्री को स्मरण नहीं किया, अगर ऐसे कोई व्यक्ति आए उनका समाधि दे। वाह बोलते ही सभी को अवस्था खराब हो गया और एक एक खिसक किसी सबके सब खिसक गए। वहां पर जितना पुलिस अफिसर थे वो दंग रह गए, ऐसे ही सब साधु थे। तब प्रभुपाद ने उनको शरीर को उन्होंने बताया था, मेरे शरीर में रस्सी बांध करके वो लोग सोच रहे थे, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का निर्देश है रस्सी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में उनको पूरा शरीर को घिसड़ते हुए ले जाए। प्रभुपाद ने कहा उनका गुरुदेव को जो भावना है साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते है, एक शुद्ध शिष्य के हृदय में ही शुद्ध गुरु जी का भावना प्रतिफलित होते हैं। और प्रभुपाद ने कहा जिस शरीर को जिस समय हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर को त्याग दिया, शरीर क्या है, वैष्णव का शरीर अपराधित दिव्य है, इसलिए उस शरीर को महाप्रभु कितना आदर दिया, अपना गोद में उठा करते होते हुए महाप्रभु कीर्तन करते 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 और समाधि देते अपना हस्त में महाप्रभु ने कितने आदर दिया वैष्णव शरीर को, उनको कोई ब्रज रज की कोई नवद्वीप रज की उनका कमी है। सिर्फ 24 घंटा में निरंतर जब वे रूप में जो अष्टकाली लीला को हृदय में चिंतन कर रहे हैं, क्या कोई को रस से कोई अलग है? संपूर्ण रज ही रज है, संपूर्ण अपराकृत कलवल है। इसलिए महाप्रभु ने यह आदेश दिया और इनका शरीर विसार करने जाएंगे तो प्रभुपाद स्वयं अपना हाथों में ही वे उनको समाधि देते हैं। इसलिए प्रभुपाद का कुछ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का कुछ लीला से आदेश से इनको क्रिया कुछ उल्टी दिखने पड़ती है। कहते तत्व तो नहीं, प्रभुपाद वास्तव रूप में उनका शिष्य है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जो अभिष्ट है श्री चैतन्य मन अभिष्ट, गौर किशोर बाबा जी महाराज अभिष्ट प्रभुपाद ने प्रतिष्ठित किया। उनने कहा कलकत्ता में नहीं जाना, अगर कोई बागबजार गौड़ी मठ मायापुर में नवद मठ हो चैतन्य मठ जगत में मठ स्थापन नहीं करते, अभी हम लोग जो पापी से भी पापी कीड़े से भी कीड़े हैं, कभी अभी थोड़ी बहुत जो भगवत भक्ति अनुशीलन करने का जो थोड़ी हमें सुजग मिल रहे, कभी हमें सुजग मिल सकता था? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जिस रूप में उन्होंने भजन किया है निष्क्रिय रूप में प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद अगर प्रचार नहीं करते जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जो महिमा सारा पृथ्वी सुन रहे हैं, हाँ, और सारा पृथ्वी के लोग जो कृष्ण नाम ले रहे हैं, ये कभी हो सकता था? तो क्या गुरु क्या चाहते हैं, गुरु जी का क्या इच्छा है? गुरु जी का इच्छा है श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जनभूतले। चैतन्य महाप्रभु का मन अभिष्ट है, महाप्रभु का मन अभिष्ट किया है, महाप्रभु का मन अभिष्ट है प्रति घरे घरे किया कर यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, महाप्रभु का यही आदेश है। या भाई ना बोली में ना बोला है यार, पृथ्वी से आशी जाता नगर आदि का सर्वत्र प्रचार है वे मरना, ये महाप्रभु का यही मनोभिष्ट है। अगर यह मनोभिष्ट को किसने जगत में स्थापन किया तो किसने स्थापन किया है? श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का अभिष्ट यही, तब उन्होंने उनको अभिष्ट को संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने प्रचार करके अभी सारा दुनिया कृष्ण नाम कीर्तन में नाच उठ रहे, सब कृष्ण कीर्तन में सब मतवाला बोल हो रहे, इसका कृपा है। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद और हमारे गुरु वर्गो का ये कृपा है। इसलिए उनका वो कभी गुरु जी को विरोध नहीं किए, उनको एक समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बड़े सुंदर शांतिपूरी धोती और बड़े सुंदर कुर्ता पहन करके हर बार प्रभुपाद को बात लाए, जो कि अत्यंत अत्यंत बैराग रूप में रहने वाले किसी तरह से खा पी करके जिसको देख करके बोले अरे ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इतना बढ़िया धोती इतने बढ़िया कपड़े और हर भाषा क्या बात है, कहते आप ऐसे क्यों रह रहे हो? कहते यही बस यही बस है। कहते क्यों? कहते कुछ बाबा जी लोग बालाजी वेश बैराग का वेश लेकर के बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लिए हुए भैया बाबाजी का वेश कर रहे हैं बड़े गंदी गंदी काम, उससे तो अच्छा है अच्छे वेश पे खाड़ बाड़ में रहा करो और भगवान का भजन करो। इसलिए उन्होंने यह शिक्षा दिया। कहते किसी समय किसी सिक्के के ऊपर में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के घर में उसमें कुछ सामान रखा हुआ था, एक सांप ने कभी उसको ऊपर में चढ़ करके कभी उसने मुंह लगाई, किसी एक स्त्री ने देख लिया था उसको देख लिया था, तो जब वो सांप चला गया तो स्त्री ने आकर के बोले बाबा जी महाराज हमने देखा है एक सांप इस चीखे के ऊपर में चढ़े और मुंह लगाया, खबरदार खाना भी मर जाओगे। इतने में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इतने बिगड़ गए उसके ऊपर में, तू यहाँ से चले जा सत्यानाशी, यहाँ पर किस लिए आए, क्या करने के लिए आए, भाग यहाँ से, अगर मेरे को सांप खा जाएगा तो अच्छा लेकिन तू नहीं खा जाए। इसलिए वहां पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शिक्षा देते हैं, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कभी कभी स्त्रियां सेवा की भावना से कहते सनी सनी कहते धीरे धीरे सेवा की भावना लेकर के आते हैं साधु को पास में, आ करके धीरे 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 उसको संपूर्ण ग्रास कर लेते हैं। इसलिए धीरे 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 चित्त बद्ध होते ही हैं, धीरे धीरे सेवा पाप पा करके उसको प्रति हो जाता है प्रीति भावना, धीरे धीरे ऐसे प्रेम बढ़ते 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 दिन भगवान से मन हट करके माया में मन चला जाता है, माया बच जाता है। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने शिक्षा दिया हा हंत हंत विश्व भक्षण अभी असाधु, कभी चहर खाने पर कभी एक जीवन बर्बाद होता है, लेकिन अगर किसी माया में फंस गया तो कभी एक जीवन किया उसको लाख करोड़ जीवन सर्वनाश हो जाता है।
इतनी जोर जबरदस्ती उसके ऊपर में माया की संस्कार पड़ता है। एक जीवन का कर्म उसको 84 लाख जन्म भटकाने में उसको लगा देता है। इसलिए जीव माया से कितने दूर रहे, भजन करने वालों को कितने दूर रहनी चाहिए माया से, यहाँ पर गौर किशोर दास बाबाजी महाराज अपना जीवन चरित्र शिक्षा देते हैं। इसलिए आज उनका तिरुभाव है, हुए अपना जीवन में जो शिक्षा दिया बहुत कठिन है उनको शिक्षा ग्रहण करना, एक शुद्ध वैराग्य। इसलिए हम गुरु जी के चरण में गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के चरण में प्रार्थना करते हैं, हुए हम लोगों पर आशीर्वाद कृपा करें, किसी ना किसी जीवन में उनका आदर्श को लेते हुए जैसे हम अपना जीवन में भजन साधन में कुछ कर सके। वंशा को
within this world, externally performing the activities of a sadhaka, although siddha, mahapurusha, but yet externally showing the pathway for all to follow. Just as the six Goswamis, also they perform their internal bhajan, and internally they were absorbed 24 hours in remembering Radha and Krishna's pastimes and wandering throughout the land of Braja. But externally, they were also showing Samkhya Purvaka Namagana Nadibi Kalavasani Krito Nidrahara Vihara Kari Vichito Chatyanta Dino Chayo. So they were externally showing very high level of renunciation by dint of their absorption in the eternal pastimes of the Lord. So it is important to understand, in the case of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, that we say he was Sakshat Vairagya Murtaye. He was directly the embodiment of Vairagya. But this Vairagya, it was not artificially imposed, or it was not an external effort of his, but rather this Vairagya was the result of his extreme moods of Vipralamba, separation moods, and his deep absorption in the pastimes of the Lord. Just as Srila Raghunath Das Goswami, his renunciation was considered to be impeccable, and just like the lines that are created on a stone, they cannot be erased. So firm was his vow of renunciation. So in the same way, Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj's renunciation, it was on this same level. So his absorption in the eternal pastimes of the Lord was evident by the bhajan that he was performing, how he was completely aloof from all external association, and he preferred, even at one stage in his later life, he preferred to live within an external surrounding of a latrine with very bad odors and smells, and being absorbed completely in internal nam bhajan and remembering the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip Dham. He was living in the Dham. He had no sense of this external, apparently very abominable condition. So he was completely immersed, so much so that he told, I prefer to be in this place rather than smell the stench of the materialistic persons who are absorbed in the abominable sense gratification of this material world. So Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, he exhibited his mercy upon so many individuals who had come to him. And there are many narrations of different incidences from his life where he gave good advice. Because although he was a bhajanandi, he was not going to meet the public directly. He was not performing the activities of Gosthyanandi, which his great disciple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, performed. But they were, of course, on the same level. The difference between Bhajanandi and Gosthyanandi is only in the internal inspiration which the Lord is giving in the heart of that pure Vaishnava. Otherwise, there is no difference. Some persons, just like the six Goswamis of Vrindavan, they did not contact the general mass of people so much. But yet we have personalities like Srila Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, Shyamananda Prabhu, and so forth in our Rupa Nuga Guru Varga, who very extensively preached. But all were on the same level, actually. Only it is a dictation from within the heart, given directly by the Lord, that one will assume this position of Gosthyanandi or Bhajanandi. So Srila Gaurakishore Das Goswami Maharaj, he gave very good advices by his, first of all, by his own example. But whenever anyone would come to him, he would give them very direct advice. He would not mince words, and he would cut to the exact point which they would need for their eternal benefit. There is one incident of a young Babaji who came and he wanted to do bhajan in the association of Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. So he was performing bhajan, but Srila Babaji Maharaj was giving him advice that was not to his liking. So he decided to leave that place and he went off on his own and began to simply do solitary bhajan, nirjan bhajan. But after some time, he became very depressed. He became very sad. And gradually he returned to Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. And at that time, Srila Babaji Maharaj told him, he said that actually, whatever sharp words are used by the pure devotee, it is his causeless mercy upon the conditioned soul, because he is actually his real friend. He is telling him what is the real medicine for his diseased condition, and therefore he is acting as his real friend. But unfortunately, the conditioned soul, he doesn't want to be corrected. He doesn't want to hear this good advice from the lips of a self-realized soul. And sometimes when he hears such words which may cut into his heart, then he may decide to leave that place and go away from that Vaishnava. But at the same time, this conditioned soul, he may remain in his home and he may listen to so many criticisms and chastisements from his family members, from his wife, from his children, but he will never leave them. He will remain there despite being constantly criticized. So he told this young Babaji that whatever I am teaching to you, it is for your benefit. So you should accept this as my mercy, and you should perform your bhajan in my association. Because in my association, you will be able to hear constantly about the pastimes of the Lord. You will be able to perform nam bhajan. And in this way, you will surpass all of the impediments. But if you go off on your own, if you try to do nirjan bhajan on your own, you will simply be associating with your mind, and gradually material desires will overpower you, and you will give up the path of bhajan. So in this way, Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, many persons, he was very famous at that time in Navadvip Dham as a Siddha Mahatma. And many persons became attracted to him. And they would want to come to him and get his blessings in various ways and get his support. There's one incident of one Munindra Chandri Chandra Guha. Yeah, Munindra Chandra Nandi. Munindra. He was a very powerful royal figure, landowner, but he was also like a king, and he was a Vaishnava. And he had appreciation for the association of the sadhus. So he wanted to invite Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj to come to a very great conference. He was trying to organize a Vaishnava conference. So he wanted that Babaji Maharaj will leave Navadvip Dham, and he will come there and reside in his palace for some days, and he will attend this Vaishnava conference. So he was begging him and insisting, please Babaji Maharaj, come. So then at that time, Babaji Maharaj told this Manindra Chandra Nandi, he told him that if I go there, first of all, I will have to leave Gaur Dham. I will have to leave this eternal Dham of my Vishwambar, my Mahaprabhu. And then I may come there to your palace. And receiving very nice facilities at your palace, such as very nice bedding, very nice food, and so forth, I may become somewhat attached to these things. And gradually, I may become more and more attached, and I may start to see you as my competitor. That, oh, you have so much and I have so little. And therefore, I would may commit offense against you, and you are a Vaishnava and a Vaishnava king. So I prefer that this will not happen. I want to have a very loving relationship with you. I want to continue to cultivate pure bhakti in your association. So it is better that instead of my going to your palace, that you should give up your palace, all of your wealth, and you should come here and reside with me on the banks of the Ganga and accept the path of renunciation, and together we will hear Harikatha and we will enjoy the taste of the bliss of pure bhakti. So Manindra Chandra Nandi, of course, he did not accept this advice. But nevertheless, Gaurakishore Das Babaji Maharaj, he was always being very direct. He would never mince his words, and he would try to give the best advice so that a person could easily give up their material attachments. So Srila Babaji Maharaj, in many circumstances, his life was an example to show that in anyone who is residing in the holy Dham of the Supreme Lord, they must not commit offense against the holy Dham. They must not maintain their material attachments and come to the holy town, bringing the same material attachments that they have in their ordinary family life. But if they want to come to the Dham and actually reside in the Dham, oh, then they should actually follow this path that he was showing by his own example of total renunciation of the mundane sense gratification and completely absorbing oneself 24 hours daily in hearing, chanting, and remembering the pastimes of the Lord. So this example, if it is not shown by the Mahabhagavat Vaishnavas, well then, how will the ordinary mass of people know what to do? Because everyone within this material world is in a diseased condition. They do not know what is beneficial for them. But when they come into the association of a great, pure Vaishnava, that Vaishnava can immediately detect, just like the most expert doctor who takes the pulse, can immediately detect what is the best medicine for that individual, and they can prescribe and give them all benefit. So Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, in our disciplic succession, he is the very, very great, powerful Mahabhagavat, who is the spiritual master of our Param Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And although Srila Gaurakishore Das Goswami Maharaj, from an external point of view, from a material level, he was not educated and even illiterate. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, on the other hand, he was the most educated person, most highly intellectual, literate person, greatest intellect, powerful personality. But he submitted himself at the lotus feet of Srila Gaurakishore Das Goswami Maharaj and begged him for initiation. And when he submitted himself by the order of Bhaktivinoda Thakur that he should go there, Srila Gaurakishore Das Goswami Maharaj said that, "I am not qualified to give you. You are a very exalted personality, but I am just from an ordinary level, so I cannot give you initiation." And Bhaktisiddhanta Saraswati was crying at his lotus feet. And finally, after repeated attempts, then finally Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, he agreed to accept Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he has written himself that when I met my Guru Maharaj, then every shred of false ego that I ever had within my heart, of course he was a pure, eternal devotee of Lord Chaitanya from the Nitya Dham, but playing the role of a sadhaka in this world. And he told that he completely removed any kind of false ego that I had, and I realized my position as a soul within this world completely dependent upon the mercy of his lotus feet. So in our disciplic succession, all of our Guru Parampara, they are of this level. They are the Mahabhagavats, and they are Rupanuga Vaishnavas, Rasik Vaishnavas, down to the present day, coming down in our line to Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and down to our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, who also told us that I have gone to the university of Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, and that is now why I can preach all over the world and give this mercy in the message of Chaitanya Mahaprabhu. So we bow down to his lotus feet and bend the knee and become servants of his lotus feet and become servant of the servant of the servant of Srila Gaurakishore Das Goswami Maharaj. Vansha Kalpa Kruvashka Kripasi Vyadhyayasa.
Om Agyanathmirandrasya Gyananjana Slavaya Chakchur Vidanjena Tasmai Sri Guravinu Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Sri Advaita Jagadadhara Sivasadi Sri Gauravaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama राम राम हरे हरे। सबसे पहले अष्टांग गुरुपाद प्रभु नित्य लीला प्रथम विष्णुपाद अस्तुत सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज तथा वंद विष्णुपाद विभ्राजाचार्य वर्य
त्रिदंडी स्वामी स्वामी वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंत उपस्थित सन्यासी बिंद ब्रह्मचारी बिंद मातृबिंद गुरुगत सज्जन बिंद सबके चरण कमल में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज उत्थान एकादशी तिथि है, जिस तिथि के अवलंबन करके हम लोग के गुरु परंपरा में विशेष करके श्री गोविंद दास बाबा जी महाराज इस धराधाम से अप्रकट लीला भी प्रकाश किए। आज हम लोग प्रातः काल से अभी तक वैष्णव के मुखारविंद से, श्री गुरुदेव के मुखारविंद से गोविंद दास बाबा जी महाराज की अपराजित जीवन चरित्र कथा श्रवण कर रहे हैं। वैष्णवीर गुणगान कोहली जीव जीवी प्राण, वैष्णव के गुणगान करने से हम लोग माया से मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार भगवान की आविर्भाव की हम लोग पालन करते हैं, उसी प्रकार भगवत भक्त के आविर्भाव तिरुभाव के पालन करने से जीव शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। विशेष करके गोविंद दास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी किस प्रकार वैराग्य से भजन करते थे, महाप्रभु गण स वैराग्य प्रधान जहाँ देखी पुष्ट हन बहुत भगवान, श्री कृष्णदास कविराज वर्णन करते महाप्रभु के जितने गण है उनके भजन साधन किस प्रकार है, कैसे वैराग्य बाण होकर के भजन करते थे। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि यापन करते थे और कैसे माधुपुरी के द्वारा जी को निर्वाह करते थे और सदा सर्वदा राधा गोविंद की लीला में तन्मय होकर के रहते थे। 56 दंड रात्रि जिने राधा गोविंद बिनो नहीं जाने, 40 दंड सुते थके सपने राधा गोविंद देखे। इस प्रकार भजन भी हम लोग देखते हैं गोविंद दास बाजी महाराज के जीवन में, उनके जीवन आदर्श के लेकर के हम लोग को चलना है। और नहीं पा रहा हूँ दूसरी बात है कि गुरुदेव कहते हैं उसी आदर्श के लेकर के जीवन में आगे बढ़ना है। जिस प्रकार गोविंददास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र हम लोग यह देखते हैं कि कैसे वैराग्य होकर के भजन करते हैं, जैसे उनके प्रणाम मंत्र में हम लोग अनित प्रणाम करते हैं, नमो गौर विसराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलम्ब मुझे पादा मुझे इस प्रकार नमो गौरव सरा साक्षात वैराग्य मूर्त वैराग्य के मूर्त विग्रह स्वरूप श्री गोविंद दास बाबा जी महाराज है। किंतु वैराग्य की कई परिभाषा हमारे आचार्य पादों ने वर्णन किया। एक तो वैराग्य के साधन होता है क्या विषय से राग नहीं हो, जिसको उसके कहा जाए वैराग्य। और एक होता है वैराग्य शब्द के विशेष तात्पर्य है विशेष रागिनी वैराग्य, अर्थात भगवान और भगवत भगवत भजन में इसके राग, वो राग भी कहां से रागात्मिका भक्ति तक पहुंचते हैं, जिसमें हमारे श्री सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी के चरण वंदना करते हुए भी कहते हैं विराग मंजर में कहते हैं वैराग्य जुग भक्ति रसन प्रजत्नी अपायन अनुहित संधम कृपांबुदी जो परद भगवती सनातन स्तम प्रभु आश्रय। वैराग्य क्या है, विशेष राग अर्थात अपने इष्ट देव के प्रति अनुराग होना चाहिए। और विशेष करके जिस प्रकार ब्रजवासी लोग अपने इष्ट देव के प्रति जिस प्रकार राग उसी प्रकार आगे यथार्थ वैराग्य विशेष राग होते हैं, इसलिए कहते हैं वैराग ब्रजवासी जन विराजंती अभिभक्ति ब्रजवासी जनादिशु, विशेष इसमें तो राग ब्रजवासी में दिखाई पड़ते हैं। हम लोग देखते हैं गोविंददास बाबा जी और महाराज में ये विशेष राग किस प्रकार है, जैसे अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार विप्रलम्ब भाव से भजन करते कुथाई को प्रेमयी राधे राधे तुम्हारे कमल तुम्हारे डाके राधे राधे, गोसाई एक बार डाके कमल बने एक बार डाके निधु बने, इस प्रकार वैराग्य होकर के जाने कैसे तन्मय होकर के भजन करते थे, उनकी भजन आदर्श ये हम लोग के उद्देश्य है। गोविंददास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र हम लोग भी देखते हैं, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कोई एक व्यक्ति आकर के बोले महाराज मैं नवद्वीप धाम में 5 कट्ठा जो है जमीन खरीद लिया। देखो धाम की तत्व होने पर पता है श्री गोविंददास बाबा जी महाराज धाम के बारे में कैसे वर्णन कर रहे हैं, पर 5 कट्ठा जमीन खरीद लिया, धाम के एक धुड़ी को कोई खरीद नहीं सकते, क्यों धाम चिन्मय
जिन वर्ष धाम के कोई खरीद सकते हैं, जो वहां भागवत होते हैं वो उसी प्रकार धाम के दर्शन करते हैं। कृपा करी मैं जाल उठाए जखोन अभी तक ये सुविशाल चीन मैं भवन, ये धाम के ऊपर ये मैं के जाल बिछा हुआ लगा हुआ है जिसके धाम के ऊपर हम लोग सब चल रहे हैं। किंतु यदि हम लोग जो मैं के शरणापन्न हो जाए, कुलदेव के चरण शरणापन्न हो जाए, तब जो मैं वह धाम वो माया के जाल को उठा लेंगे तब हम लोग चिन्मय धाम को जो दर्शन कर सकते हैं। किंतु एक उपाय एक ही है, जब तक निष्किन चरण और भगत भक्त के चरण में उनके चरण में जब तक अभिषिक्त नहीं हो जाए, उनके अनुगत में जब तक हम लोग भजन नहीं करें तब तक धाम हम लोग के निकट कृपा नहीं करेंगे और धाम हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार गौर कृष्णदास बाजी महाराज ये समस्त शिक्षा दी थी कि किस प्रकार धाम में रहना है। दूसरी बात यह बताया, कोई एक व्यक्ति आकर के बोले बाबा जी महाराज मुझे कृपा कीजिए कृपा कीजिए, बार बार बोले बाबा जी महाराज देख करके कहने लगे मैं कृपा करने के लायक नहीं हूँ ऐसे करें। किंतु व्यक्ति जब बार बार बाबा जी महाराज के कहने लगे बाबा जी महाराज क्या बोले लो एक डोर को बेच देखो व्यक्ति भागे जो करके लो मतलब क्या है सन्यास ग्रहण करो। सन्यास के तात्पर्य क्या है, सन्यास के तात्पर्य कल्याण प्रभु कहे ये वेश धारण मुकुंद सेवन व्रत वही तो वृंदावन, मुकुंद सेवन की व्रत लेना और वृंदावन में जाकर के वैकांतिक रूप में राधा गोविंद जी भजन करना, ये तो सन्यासी के कर्तव्य क्या, अपने परिवार जन से दूर रहना, उनके साथ किसी प्रकार संबंध नहीं रखना, ये सन्यासी के कर्तव्य। इसी प्रकार सब पूरे वर्णन देते हैं जब बाबा जी महाराज रोज होकर लोग तब वो कैसे भागे। इसी प्रकार बाबा जी महाराज जीवन हम लोग की शिक्षा देते हैं सन्यासी के किस प्रकार कर्तव्य और कैसे उसके आचार आचरण करना है। नहीं तो सन्यासी अपने गृह के साथ समझो रहे माता पिता पुत्र स्त्री पुत्र के साथ लेन देन करते रहे ये सन्यासी लक्ष्य नहीं है। इसमें प्रचुर में भक्तिचंद प्रभुपाद उसमें वर्णन करते हैं। एक बार भक्तिचंद प्रभुपाद गोरखदास बाबाजी महाराज के निकट प्रार्थना की बाबाजी महाराज मुझे आदेश दीजिए मैं कुछ रस ग्रंथ आदि मैं प्रकाश करूं। बाबाजी महाराज जयनगर के बोले ज्यादा नहीं कोई एक और दो रस ग्रंथ आप प्रकाश कर सकते हैं क्योंकि मैं देख लू सब संसार में सब अनधिकारी है। ये रस ग्रंथ आदि प्रकाश होने से अनधिकारी लोग इस ग्रंथ के अध्ययन करके वो सहज और प्राकृत होकर के मरेंगे, इसलिए इस रस ग्रंथ यदि सब लुप्त हो जाए तब ये समस्त लोग के उद्धार हो सकते हैं, कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार गोरखदास बाबाजी महाराज ऐसे हम लोग की शिक्षा दी। अभी 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 हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे गोरखदास बाबाजी के समाधि दिया गया, भक्तिचंद प्रभुपाद अपने गुरुदेव के समाधि दी अपने हाथ में, इसमें वर्णन करते हैं 1915 साल में श्री गोरखदास बाबाजी महाराज इस धाम से अप्रकट हुए और इसके पश्चात प्रजापति मिश्र प्रभुपाद अपने हाथ से और उनके समाधि की जो है गंगा के पश्चिम तट पर वहीं पर समाधि दी। किंतु काल क्रम से भगीरथी उफनती हुई और चलती रही और वह तट के पश्चिम तट के दर्दाट करके समाधि के स्थल के भी लेकर के चलने लगी। तब उस समय जगत मिश्र प्रभुपाद उनके अंतरंग जो परिकार कीर्ति रत्न प्रभु अर्थात परमात्मा परम गुरु महाविनोद्या ब्रह्मचर्य गुरु अपने कक्ष में बुला करके बताया किसी तरह से गुरुदेव कहीं गोरखदास बाबाजी महाराज के समाधि को लाया जाए और मायापुर में राधाकुंड के तट पर उनके पुनस्थापित किए जाए। उस समय कीर्ति रत्न प्रभु उन्होंने क्या की अपने सतीर्थ और अपने सेवा विग्रह प्रभु नरहरी प्रभु के साथ में लेकर के और अथक परिश्रम करके वह समाधि को जो है उठाया और उठा करके और फिर दो तीन दिन के बाद वह समाधि के लेकर के और नाम संकीर्तन जो से और अपने गुरु भाई सतीर्थ के साथ और मायापुर में और राधा कुंड के तट पर उनके समाधि ली। किंतु कुछ बाबा जी सहजिया लोग उन्होंने विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के ऊपर केस लगाया लंचना लगाया जे ये अवैध है समाधि के क्यों उठाया कैसे की केस दायर कर दिया। उस समय अंग्रेज शासन है ब्रिटिश शासन है, उस समय जो ब्रिटिश जज था वो ईसाई था क्रिश्चन के और उस क्रिस्टन के हाथ में यही कोक यही केस लगा और इस समाधि को क्यों उठाया, इस पे दंड होनी चाहिए। उस समय ईसाई के धर्म के अनुसार और जो लोग समाधि के उठाते हैं स्थानांतरित करते हैं उसके उचित और कठोर दंड दिया जाता है। और इसी प्रकार वो जज उन्होंने विचार करके रखे हैं जो विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य के कठोर कारादंड दिया जाए, इस प्रकार का है। किंतु जिस दिन उनके सवाल हुई उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और कितने सुंदर रूप से उस जज साहब के निकट ऐसे बोले जी हम लोग ईसाई नहीं है, हम लोग मुस्लिम नहीं है, हम लोग भारतीय हिंदू है, हिंदू धर्म के आने के अनुसार और हिंदू धर्म की जाए यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो वह समाधि के जो है स्थानांतर की जाए। और इसी प्रकार उन्होंने उन्हें प्रमाण भी दिखाया जिनके उनके वकील लोग भी जिसके सवाल कर नहीं सके और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उस ईसाई अर्थात क्रिश्चियन जब साहब के निकट इतने सुंदर प्रमाण आदि देकर के रखा और देकर के वो ईसाई जज अपने मत जो बदला करके और यानी विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य के खिलाफ कर दिया अर्थात उनके दंड नहीं दिया मुक्त कर दिया। और इसी प्रकार विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद की जय मनोभीष्ट मूर्ति की। और इसी कथा को जब प्रभुपाद के निकट जब पहुंचे प्रभुपाद के आंखों से आंसू आ गया और प्रभुपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य के इसी प्रकार आशीर्वाद करने लगे। इसमें शिक्षा एक ही है, हम लोग देखते हैं गुरु पाद के जो कुछ भी है सब कुछ अप्राकृत है। जिस प्रकार विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जगत में यह प्रतिष्ठा की किस प्रकार गुरुदेव के मनोभीष्ट स्थापित करते हम लोग सोचते हैं ये सब कर्म है किंतु ये कर्म नहीं है। कुछ लोग काम कहते हैं रसोई बनाना झाड़ू देना ये सब कर्म कहते हैं किंतु ये सब कर्म नहीं है, गुरुपात्म के सेवा ही हम लोग की मूल है। किस प्रकार गुरुपात्म के मनोभीष्ट स्थापित करना है, दो चार श्लोक सीख लिया भक्तिता दे दिया गशासन में बैठ गया ये बुरी बात नहीं है, गुरुपात्म के मनोभीष्ट स्थापित करना यही हम लोग के जीवन के उद्देश्य है। इसी प्रकार प्रभुपाद अपने गुरुपात्म के समाधि और उसी स्थल पर राधा कुंड के तौर पर अर्थात मायापुर में जो राधा कुंड था ये मायापुर में जो राधा कुंड स्थल जो स्थापित थी उसी के स्थान पर प्रभुपाद ने बहुत सब बहुत अपने गुरुदेव की समाधि और उसी समय सब प्रभुपाद जब प्रांगण भाषा में और अपने प्रभुपाद की अपने गुणावली कीर्तन करने लगे और सबों के आंखों से आंसू आने लगे और सबके हृदय सम्मिलित हो गया। इसी प्रकार विनोद बिहारी ब्रह्मचारी अपने गुरुदेव के मनोभीष्ट और अपने परम गुरु महाराज की भी मनोभीष्ट पूर्ति की। इसलिए आज यही लक्षण सुबह बातों पर हम लोग आए हम लोग जीवन आज सफल है ऐसे गुरुदेव परम गुरुदेव की हम लोग मनोभीष्ट स्थापित करें। वंशाल
एक समय गौर कृष्ण दासपा जी महाराज और धरात्रे समय अंध लोग और अन्य और बावला वृक्ष तारी कांटा उन रास्ता में क्या गुरी और आधी रात्रि समय थे मायापुर उपस्थित हुए। प्रभुपाद ओई समय उठे तक प्रणाम के आपने की रकम आज ले तके एक थी बालक हमारा के एक समय कोई वहां पर उनके पास में आया बाबा जी महाराज अपनी अनुग्रह कर हमी एक कृष्ण दासी संग्रह करे मैंने विवाह करे बोल आपनी कृपा कर हमारे सुखे विषय को यही भाव गौरकुशोक दास राम महाराज जी सुने बोलें ओ बेस्ट भाव तुम्हें कृष्ण दासी संग्रह करे खबरदार वो बुद्धि कारण है तो तुम्हें मर ताके रोज पूजा पर्व कृष्ण दासी तो अतः खबरदार ताके भोगी पा प्रतिदिन पूजा इत्यादि कर दिए तहार सब प्रकार सेवा सुने और प्रभुपाद के दो आदेश को प्रभुपाद जी ने लंघन किया नहीं माना कली के स्थान में मत जाना और प्रभुपाद जी ने वहीं पर सबसे पहले और एक उल्लंघन किया उन्होंने कहा था गौतम दास बाबा जी महाराज मैं शरीर छोड़ दूं हमारे शरीर में पैर में रस्सी बांध करके गली गली घुमा करके कमरा में प्रभुपाद ने किसको भी नहीं घुमा बहुत सी तो ऐसे मालूम होता है कि गुरु जी का आदेश नहीं पालन किया किंतु बहुत समय में ऐसा होता है जो गुरु जी के भावों को समझकर उनकी क्रीड़ादपित सुनी भावना को समझ करके गुरु उनके आदेश को उल्लंघन करके मालूम होता है कि उसके विपरीत कर रहा है किंतु यथार्थ में ऐसा नरोत्तम ठाकुर भी अपने गुरुजी भजन कर रहे थे और एक आदमी को इन्होंने पानी पिला दिया ओ जाओ पानी पिलाओ देश में लोगों को अष्टांगी भजन में तुम्हारी रुचि नहीं है तो उसको नहीं समझता तो उस समय किसी तरह से उनको क्षमा नहीं जाओ किंतु अपने देश में आकर के उन्होंने सर्वत्र महाप्रभु का वाणी का प्रचार इसलिए कभी कभी गुरु के विचारों को समझना चाहिए और समझ करके तब उसका पालन करना चाहिए महाभारत में भी ऐसा देखा गया वहां पर भी अर्जुन ने कृष्ण की बात को नहीं माना नहीं अर्जुन कृष्ण ने कहा मारो इसको आतताई को और द्रौपदी ने कहा कि नहीं इसको छोड़ दो तो भीम ने कहा कि इसको मारो और कृष्ण ने कहा कि आतताई का वध करना ही उचित उस समय में अर्जुन ने नहीं किया विचार करके मुंडन करके पांच सिखा दाढ़ी रख करके पूछ कमा करके इसलिए कभी कभी गुरु वर्गों का विचार समझना बड़ा भारी कठिन होता है किंतु सच निश्चय समझ सकता हम लोग कहते हैं ये हमारे गुरु जी हैं हमारे शिक्षा गुरु हैं शिक्षा गुरु शिक्षा शिष्य है कौन जो उनके समस्त आदेशों को जानबूझ करके पालन करे और यदि कोई गुरु से ही तर्क वितर्क करने लग जाए तो शिष्य क्या उसकी सिद्धि होनी कभी संभव है सबकी जो को विचार करके बहुत दास किशोर दास बाबा जी महाराज का स्मरण करो उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करो आज के इस शुभ दिन में हम लोग भी सभी उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं वो कृपा अभी अभिनय होगा जस्ट विल बी रेडी
आपने बताया एक बार 17 साल पहले आपके साथ मायापुर कुछ और जजावर महाराज के पास हम लोग गए थे तब जजावर महाराज बता रहे थे प्रभुपाद के बारे में कि गुरुदास जी बता कली के स्थान कलकत्ता मत जाना पहले मठ कलकत्ता में स्थापन किया और उन्होंने बताया था कि मैं अयोग्य हूँ आपका सेवा नहीं कर सका मैं अपने पैर में रस्सी बांध करके घुमाकर गंगा में फेंक देना, पैर में रस्सी बांध कर नवदी में घुमा के गंगा में फेंक देना। तो अर्थ बताया था गुरु आदेश झविचरणिया की अविचरणिया की मित्र निश्चित रूप में और मतलब अशेष रूप में विचार करके करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, गुरु जी का अर्थ क्या है, कोली के स्थान के जीव को पहले उद्धार करो, ये भाव का लेकर तो पहले कर जाता है स्थापन किया। अजोग का अर्थ बताया न योग्य जस्मात् स इति अयोग्य, जिसे समान का योग्य हो ही नहीं सकता ये अयोग्य है, पर इसलिए उनका अर्थ लेकर के पहले रस्सी नहीं बांधा था, मुझे जजवान भाई ने बताया था।
Please be ready for the drama.
Good afternoon, you are ready?
So today is the disappearance of Sri Gaurakrishna Das Goswami Maharaj. Some past times that we heard that Sri Gaurakrishna Das Babaji Maharaj was blind, appeared like he was blind. But in the middle of the night, he came to Mayapur. And Prabhupada, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur asked, "Oh Gurudev, how did you come here?" Because the road was full of thorns, there was no boat, also there were thorn trees everywhere. And Babaji Maharaj said, "I don't know, some boy took me across." One time also, one person came to see Gaurakrishna Das Babaji Maharaj and said, "Oh, look, I have brought one Krishna Dasi, one maid servant of Krishna." Then Babaji Maharaj said like fire, "Oh, be careful. Don't try and enjoy her or you will be completely destroyed. You should serve her every day. You should cook for her and you should worship her." And that man became afraid and ran. We see that the order of the Guru should never be disobeyed. But it appears that Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disobeyed two orders of his Guru. Sri Gaurakrishna Das Babaji Maharaj said, "You should never go to Calcutta. And also, after I have left this world, you should tie my feet to the horse and drag me through the streets of Navadvip. And at the end, you should throw my body in the Ganga." Therefore, it is very difficult to understand the mind of the Guru. For example, Sri Narottam Das Thakur, as he was chanting with his Guru, one man came and asked for a glass of water. And Sri Narottam Das left his Harinam and gave water to that man. His Gurudev, Lokanath Goswami, became very angry and said, "Oh, you have no taste for remembering the Astakali Leela of Radha Krishna. You should go back home and distribute water there." And in no case would he forgive Narottam Das Thakur. So Narottam Das Thakur, understanding the order of his Guru, he preached the Vani of Chaitanya Mahaprabhu everywhere. Therefore, sometimes we think we understand the order or the instruction of Guru, but it's not so easy to understand. Only a satshisha, only a bona fide disciple can understand the innermost intention of the Guru. Even we see in Mahabharata, sometimes it is like that. Aswatthama had killed the sons of Draupadi, therefore he was captured. Bhimsen was saying, "You must kill him." Bhimsen was saying to Krishna, "You must kill him." And Krishna said, "Yes, also, an enemy must be killed anyway, there is no doubt." But Yudhisthira, on the other hand, and Draupadi were begging for forgiveness. Therefore Krishna said to Arjuna, "Do as you think, you should kill him and not kill him." "You should kill him and not kill him." Therefore, what did Arjuna? He could understand the mind of Arjuna, of Krishna. Therefore he shaved his head and disrespected him, thereby killing him, by dishonoring him, and not killing him, by leaving him alive. Therefore, we hear that the main duty of the disciple, of the Shiksha or Diksha disciple, is to follow the order of Gurudev without any twisting, without any changing, without any deliberation. If the disciple begins to argue with the Guru, "No, it should be like that, it should be like this," then where is the question of him being disciple? Therefore, to really understand this thing is very difficult, and only such as you can understand how Prabhupada really followed the order of Sri Gaura Goswami Babaji Maharaj. Pujapad Madhav Maharaj said, Pujapad Madhav Maharaj explaining that Sri Saraswati Thakur, he never went to the place of Kali. He went there and removed Kali and established the worship of Radha Krishna in Calcutta. Therefore, he fulfilled the manovis, the innermost intention of his Gurudev.
আপনারা কালকে পান্ডা বিদায় গোবর্ধনের কিছু প্রণামী নিয়ে আসবেন সঙ্গে। কাল আপ লোক গোবর্ধন কি পান্ডা কো বিদায় করতে কে লিয়ে উনকা প্রণামী কা রুপিয়া সাথ মে লে আয়েঙ্গে। সকাল বেলা ইন দি মর্নিং অল ডিভোটিস শুড ব্রিং সাম প্রণামী ফর দি পান্ডা অফ So you should bring and we will give it to
Hare Krishna. Our last day of discussion.